लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे धर्म संघियों और गुरुकुल छात्रों के प्रशिक्षण के लिए याचना करते हैं, ताकि वे मानवीय, प्रेरितिक, आध्यात्मिक और सामुदायिक विचरण के माध्यम से अपनी बुलाहट में विकसित होकर सुसमाचार के विश्वसनीय गवाह बन सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे प्रसारण में प्रस्तुत है सामायिक लोकोपकारी चर्चा भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर अनुग्रह मिंज और जूलियट क्रिस्टोफर। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र की मानवीय सहायता एजेंसियों ने गुरुवार को कहा है कि गाजा के दक्षिणी इलाके रफा में इसराइली बमबारी गहराने के साथ ही वहां से लगभग 80,000 लोग सुरक्षा के खातिर वहां से निकलने को मजबूर हुए हैं। रफा में इसराइली सेना की आक्रामक हलचल और गोलाबारी के कारण गाजा पट्टी में ईंधन और मानवीय सहायता बिल्कुल भी नहीं दाखिल हो सकी। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए यूएन सहायता एजेंसी के एक अधिकारी ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा, हमें मानवीय सहायता सामग्री बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रही है। सीमा चौकी के रास्ते में इसराइली सेना के अभियान जारी हैं और ये अब एक सक्रिय युद्ध क्षेत्र बन चुका है। बीते सप्ताहांत हमास द्वारा एक रॉकेट हमले के बाद इसराइल ने कैरम शेलाम सीमा चौकी को बंद कर दिया। उसके बाद इसराइली सेनाओं ने मंगलवार को रफाह की सीमा चौकी को भी बंद करके अपने नियंत्रण में ले लिया। मानवीय सहायता मामलों के संयोजन के लिए यूएन कार्यालय ओचा का कहना है कि गाजा पट्टी में पिछले 7 महीनों से जारी युद्ध से बड़े पैमाने में तबाही हुई है और मलबे के नीचे 10,000 से अधिक लोगों के दबे होने की आशंका है। यूएन एजेंसी ने गाजा में स्वास्थ्य प्रशासन से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह बात कही है। इसराइली बमबारी में कई इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अब भी हवाई, भूमि व समुद्र मार्ग से भीषण इसराइल की सैन्य कार्यवाही जारी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग के एक साझा अध्ययन के अनुसार 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के आतंकी हमलों और फिर इसराइल के जवाबी कार्रवाई के बाद फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित हुई है। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
संयुक्त राष्ट्र के मानवीय राहत मामलों के लिए कार्यालय ओचा ने आगाह किया है कि दक्षिणी गाजा के रफाह शहर में इसराइली हमले से कत्लेआम होने और पूरे गाजा में जीवन रक्षक मानवीय राहत प्रयासों को गहरी चोट पहुंचने की आशंका है। इसराइली बमबारी में कई इलाके पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, सैकड़ों इमारतों को नुकसान पहुंचा है और अब भी हवाई, भूमि व समुद्री मार्ग से इसराइल के भीषण हमले जारी हैं। ओचा ने फिलिस्तीनी नागरिक प्रतिरक्षा प्राधिकरण का हवाला देते हुए बताया है कि मलबे में दबे शवों को बाहर निकालना एक बड़ी चुनौती है, जिसकी एक बड़ी वजह बुलडोजर, खुदाई करने वाले उपकरणों और कर्मचारियों की किल्लत होना है। उधर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और पश्चिमी एशिया के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग ईएससीडब्ल्यूए ने कहा है कि गाजा पट्टी में युद्ध और अनवरत इसराइली बमबारी ने फिलिस्तीन के सामाजिक आर्थिक विकास को 20 वर्ष पीछे धकेल दिया है। गाजा युद्ध में फिलिस्तीनी अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। युद्ध का हर दिन बीतने के साथ गाजावासियों और सभी फिलिस्तीनियों पर युद्ध की विशाल कीमत बढ़ती जा रही है।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में गाजा युद्ध के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों और प्रदर्शनकारियों पर अत्यधिक बल प्रयोग करने पर चिंता व्यक्त की है। ऐसे कुछ मामलों में पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए अनेक कड़े उपायों का प्रयोग किए जाने की खबरें मिली हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सचिन गौड़।
गाजा युद्ध के विरोध में कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क के प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रदर्शन शुरू हुए थे, जिसके बाद ये कैलिफोर्निया, टेक्सास समेत अमेरिका के अन्य प्रांतों में स्थित विश्वविद्यालयों में भी फैल गए। प्रदर्शनकारी छात्रों की मांग है कि उनके कॉलेज غازہ میں اسرائیل کے سینی حملے اور فلسطینی علاقوں پر اس کے قبضے کو دیکھتے ہوئے اسرائیل سے اپنا نویش ہٹائیں۔ وشو ودیالیوں کے پرشاسنک ادھیکاریوں نے پردرشنوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کی کاروائی سے لے کر بات چیت کے ذریعے سہمتی بنانے تک الگ الگ طریقے اپنائے ہیں۔ کئی کالج پریسروں میں چھاتروں کو ہٹانے کے لیے سخت کاروائی کی گئی ہے۔ اس پرشٹھبھومی میں یو این مانوادھیکار پرمکھ وولکر ٹرک نے دھیان دلایا کہ ابھیویکتی کی سوتنترتا اور شانتی پورن طریقے سے سبھا کرنے کا ادھیکار سماج کے لیے مولبھوت ہے، خاص طور سے جب پرمکھ مدوں پر اسہمتی ہو۔ انہوں نے کہا کہ وشو ودیالیہ پرشاسن اور قانونی ایجنسیوں دوارا ابھیویکتی کو پرتیبندھت کرنے کی کاروائی پر بہت ساودھانی پوروک وچار ہونا چاہیے تاکہ وہ ادھیکاروں اور سوتنترتاؤں کے لیے خطرہ نہ بنے۔ وولکر ٹرک نے چنتا جتائی کہ انیک وشو ودیالیوں میں قانون ایجنسیوں دوارا ضرورت سے زیادہ غیر انوپاتک ڈھنگ سے کاروائی کی گئی ہے۔ ادھر یو این کی سوتنتر مانوادھیکار وشیشجے ایرین خان نے یو این نیوز کے ساتھ ایک خاص بات چیت میں کہا کہ غازہ سنکٹ واستو میں ابھیویکتی کی سوتنترتا کا ویشوک سنکٹ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غازہ یدھ کے ویرودھ اور اسرائیل کے سمرتھن میں پردرشنوں کے دوران نفرت بھرے سندیشوں اور بھاشنوں میں اچھال دیکھا گیا ہے، مگر جائز آوازوں کو سنا جانا ہوگا اور لوگوں کو اپنے راجنیتک وچار ویکت کرنے کی انومتی دی جانی ہوگی۔
संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने चेतावनी जारी की है कि सूडान के दारफूर क्षेत्र में भूखमरी टालने के लिए समय बीता जा रहा है। देश के उत्तरी दारफूर प्रांत की राजधानी अल फशर में परस्पर विरोधी सैन्य बलों के बीच झड़पों में तेजी आने से जरूरतमंदों तक जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने के प्रयासों पर असर हुआ है। परिस्थितियां बेहद गंभीर हैं। यदि उन तक समय पर सहायता नहीं पहुंची, तो दारफूर व सूडान के अन्य हिंसक टकराव प्रभावित इलाकों में बड़े पैमाने पर भूखमरी व मौत देखेंगे। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं महबूब खान।
पिछले वर्ष अप्रैल महीने में सूडान के सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के बीच लड़ाई भड़क उठी थी, जिसके बाद से ही देश हिंसक टकराव की चपेट में है और मानवीय व संरक्षण संकट उपजा है। करीब 2.5 करोड़ लोग यानी सूडान में आधी से अधिक आबादी को सहायता की आवश्यकता है और 1.77 करोड़ लोग खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। मानवीय सहायता मामलों के लिए यूएन कार्यालय ओचा ने सचेत किया है कि लड़ाई और सख्त पाबंदियों के कारण नाजुक हालात से जूझ रहे लोगों तक सहायता पहुंचाने का रास्ता सीमित है, जिससे ये संकट और गहरा हुआ है, विशेष रूप से दारफूर क्षेत्र में।
यूनेस्को ने 2011 में रचनात्मकता, संवाद और अंतर सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले एक शैक्षिक उपकरण के रूप में 30 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस घोषित किया था। तभी से अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जैज संगीत की भूमिका के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भारत स्थित यूनेस्को के दक्षिणी एशिया कार्यालय ने भागीदारों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस पर एक संगीत समारोह आयोजित किया, जिसमें जैज के जरिए एकजुटता बढ़ाने व समस्त भेदभाव मिटाने की भावना का जश्न मनाया गया। ज्यादा जानकारी के साथ अंशु शर्मा।
अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जैज संगीत की भूमिका के वैश्विक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस संगीत समारोह में दुनिया भर से आए कई प्रतिभाशाली संगीतकारों ने भाग लिया और विभिन्न देशों में लोकप्रिय जैज संगीत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया। नेदरलैंड, फ्रांस और पोलैंड के संगीतकारों से लेकर भारतीय कलाकारों के समूह तक सभी कलाकारों ने जैज के एक विविध व गतिशील संगीत अनुभव से रूबरू कराया। प्रसिद्ध जैज ड्रमर और संगीतकार तरुण बलानी ने गिटार वादक सिद्धार्थ गौतम के साथ मिलकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता संगीत प्रस्तुत किया। पोलैंड संगीत के दिग्गज कुबा वोजिक और पियोत्र दामसिक्विज के प्रदर्शन ने जैज की नवीन धुनें प्रदर्शित की, जिसमें स्थानीय संगीत के साथ ध्वनि मिश्रण के जरिए संगीत अभिव्यक्ति की सीमाओं को दीगर तराशा गया। कार्यक्रम के अंत में ध्रुव सांगारी, साहिल वासुदेव, सुहेल सईद खान, सिराज और अरीना की टीम ने साथ मिलकर संगीत पेश किया। ध्रुव सांगारी की प्रस्तुति में जैज संगीत में नई धुनों को मिलाकर भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत का जश्न मनाया गया।
आज के सभी विषय संयुक्त राष्ट्र हिंदी समाचार से लिए गए थे। अब आइए सुनते हैं आज का भक्ति गीत और उसके बाद समाचार।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, मुझ में तेरा आशीर्वाद। शीश नवाओ याद करो, जीवन का मेरे प्रभु तू गुरु। सृष्टि करता जीवन दाता, प्यार से मुझ में प्राण पोका। सृष्टि करता जीवन दाता, प्यार से मुझ में प्राण पोका। धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, मुझ में तेरा आशीर्वाद। शीश नवाओ याद करो, जीवन का मेरे प्रभु तू गुरु। माँ के गर्भ में सृजन मेरा था, अनोखी कृति तेरी मैं बना था। गर्भ में सृजन मेरा था, अनोखी कृति तेरी मैं बना था। हृदय मेरा आज भरा भरा है मधुर मीठा।
आप वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत हैं समाचार। रोम के कंसिलियाचियो ने रंग भवन में शुक्रवार को इटली में जन्म दर की सामान्य स्थिति पर आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों को संत पापा फ्रांसिस ने संबोधित कर कहा कि जन्म स्थिति का मुद्दा उनके दिल के बहुत करीब है, क्योंकि हर बच्चे का जन्म हमें स्मरण दिलाता है कि ईश्वर को मानवता पर भरोसा है। संत पापा ने कहा, प्रतिष्ठित प्राधिकारी, नागर समाज के प्रतिनिधि और प्रिय भाइयों एवं बहनों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं तथा आपका ध्यान इस सम्मेलन के आदर्श वाक्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, और वह यह कि जितने युवा होंगे उतना ही भविष्य सुरक्षित होगा। इन शब्दों से इटली में जन्म दर की सामान्य स्थिति पर आयोजित सम्मेलन के प्रतिभागियों को संबोधित कर संत पापा फ्रांसिस ने कहा कि यथार्थवाद, दूरदर्शिता और साहस के साथ जन्म दर को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उक्त तीन शब्दों पर वे विचार करना हम सबके लिए हितकर मानते हैं। संत पापा ने कहा कि वास्तव में किसी बच्चे का जन्म एक महान और अनूठी घटना है, क्योंकि यह संयोग का परिणाम नहीं है, बल्कि यह इसलिए घटी कि ईश्वर ने इसे चाहा है। हम में से प्रत्येक के लिए ईश्वर की एक विशिष्ट योजना है। यथार्थवाद शब्द पर चिंतन करते हुए संत पापा ने कहा, अतीत में ऐसे अध्ययनों और सिद्धांतों की कोई कमी नहीं रही जो पृथ्वी पर निवासियों की संख्या के बारे में चेतावनी देते रहे थे, क्योंकि बहुत अधिक बच्चों के जन्म से आर्थिक असंतुलन, संसाधनों की कमी और प्रदूषण पैदा होता है। उन्होंने कहा, मैं हमेशा इस बात से चकित रह जाता हूं कि कैसे ये शोध प्रबंध, जो अब पुराना हो चुका है और लंबे समय से अप्रचलित है, इंसानों के बारे में ऐसे बात करता है जैसे कि वे समस्याएं हों। इसके विपरीत मानव जीवन कोई समस्या नहीं है, एक उपहार है, और दुनिया में प्रदूषण और भुखमरी का आधार पैदा होने वाले बच्चे नहीं हैं, बल्कि उन लोगों की पसंद है जो केवल अपने बारे में सोचते हैं। यह एक अंधा और अनियंत्रित भौतिकवाद का प्रलाप है, एक उपभोक्तावाद का प्रलाप जो एक दुष्ट वायरस की तरह लोगों और समाज के अस्तित्व को कमजोर करता है। संत पापा ने कहा कि समस्या यह नहीं है कि दुनिया में कितने लोग हैं, बल्कि समस्या यह है कि हम कौन सी दुनिया का निर्माण कर रहे हैं। बच्चे समस्या की जड़ नहीं है, बल्कि मनुष्य का स्वार्थ समस्या है, जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों के बीच अस्वास्थ्यकर अन्योन्याश्रितताओं को जोड़ने की हद तक अन्याय और पाप की संरचनाओं का निर्माण करता है। उन्होंने कहा कि यह स्मरण रखना आवश्यक है कि जन्मों की संख्या लोगों की आशा का पहला संकेतक है, क्योंकि बच्चों और युवाओं के बिना कोई भी देश भविष्य के प्रति अपनी इच्छा खो देता है। स्पेन के बार्सिलोना नगर स्थित सान पकियानो विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों, छात्रों और प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वेटिकन में संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। इस अवसर पर उन्होंने प्रार्थना के महत्व पर बल दिया। संत पापा ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने अध्ययन में प्रभु के साथ मिलन की तलाश करने की आवश्यकता पर और इसे प्राप्त करने के लिए कलीसिया के माध्यम से उन्होंने हमें जो साधन दिए हैं उन पर विचार करें। संत पापा ने कहा कि धर्मविधि हमें यह भी याद दिलाती है कि ईश्वर के इर्द गिर्द यह मिलन सभी का है। उन्होंने कहा कि ओपुस देई समुदाय के लोग इन दिनों संत अनसेल्म पर अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आप सभी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि कलीसिया एक संगठित लोगों के समुदाय के रूप में अपने सबसे आवश्यक उद्देश्य की खोज के प्रति खुद को समर्पित करती है जो कि दिव्य जेरूसलम में कायम रहेगा जब हम संत के गीत में स्वर्गदूतों के समूह में शामिल होंगे। संत पापा ने कहा कि मनुष्य धर्म विधि के लिए है क्योंकि वह ईश्वर के लिए है, लेकिन ईश्वर के साथ मनुष्य के मिलन के बिना धर्म विधि एक विथप्पन मात्र है। विश्वविद्यालयीन प्रतिनिधियों और ओपुस देई संस्था के सदस्यों से संत पापा ने कहा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारी दैनिक धर्म विधि को जीवन में आत्मसात करने के लिए काम करें ताकि यह ईश्वर और मानव के रिश्ते को व्यक्त, प्रश्नांकित और पोषित कर सके। ब्राजील के कैथोलिक धर्माधीक्षीय सम्मेलन के अध्यक्ष तथा पोर्ते अलेग्रे के कैथोलिक धर्माधिपति महाधर्माधीश आइमेश पेंगलर ने इस बात की पुष्टि की है कि संत पापा फ्रांसिस ने परम धर्म पीठीय भिक्षादान कार्यालय के माध्यम से ब्राजील के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए ब्राजीलियाई परम धर्म पीठीय राजदूतावास में 1,00,000 यूरो का अनुदान भेजा है। मई माह की शुरुआत से ब्राजील के रियो ग्रांडे दे सुल राज्य को तबाह करने वाली बाढ़ से प्रभावित आबादी के लिए संत पापा फ्रांसिस ने 1,00,000 यूरो की धनराशि भेजी है। ब्राजील स्थित परम धर्म पीठीय राजदूतावास ने स्पष्ट किया कि संत पापा द्वारा भेजी गई सहायता प्रेरितिक अल्मोनर के माध्यम से आई है और इसका उद्देश्य बाढ़ पीड़ितों और विशेष रूप से उन सैकड़ों विस्थापितों के लिए एक ठोस संकेत है जिन्होंने अपने घर खो दिए हैं। विगत रविवार 5 मई को स्वर्ग की रानी आनंद बना प्रार्थना करने के उपरांत संत पापा ने रियो ग्रांडे दो सुल में भारी बारिश से प्रभावित लोगों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की थी जब गुइबा नदी में बाढ़ का स्तर 4 मीटर से अधिक हो गया था। मरियम को समर्पित प्रार्थना के बाद संत पापा ने उनकी प्रार्थनाओं का आश्वासन देते हुए कहा था, प्रभु मृतकों का स्वागत करें, उनके परिवारों को सांत्वना दें और जिन्हें अपने घरों से पलायन करना पड़ा है उनके प्रति एकात्मता को प्रोत्साहित करें। रियो ग्रांडे दो सुल राज्य में 425 नगर पालिकाएं प्रभावित हुई हैं, जिनमें बुधवार शाम 8 मई तक 100 मौतों की पुष्टि हुई है। इसके अतिरिक्त 130 व्यक्ति लापता हैं, 374 घायल तथा 1,63,786 विस्थापित हो गए हैं तथा 7,428 लोग शरण स्थलों में रह रहे हैं। वेटिकन में आयोजित शनिवार को बच्चों के साथ संत पापा फ्रांसिस की मुलाकात के अवसर पर शांति वार्ता हेतु 30 नोबेल पुरस्कार विजेता भी शामिल होंगे। 10 और 11 मई को #BeHuman शीर्षक के अंतर्गत ह्यूमन फ्रेटर्निटी पर दूसरा विश्व सम्मेलन होगा जिसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं, एक शांति मेज जो उन लोगों को इकट्ठा करती है जिन्होंने हाल के इतिहास में सत्ता द्वारा सत्य के हेरफेर को चुनौती देकर मानव विरोधी सुरंगों जैसे उपकरणों के प्रसार को रोककर देशज लोगों, महिलाओं और अन्य लोगों के अधिकारों के लिए संघर्षरत रहकर शांति निर्माण में योगदान दिया है, और संत पापा फ्रांसिस के साथ बच्चों की मुलाकात। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य उस दुनिया में आशा का संचार करना है जिसने अभी तक भाईचारे में रहना नहीं सीखा है। और इसी के साथ वेटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।